बनना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंघल भाई जी पहुंच चुके हैं। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भ्राता जी विगत 55 वर्षों से प्यारे बाबा की ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन बाबा के ज्ञान के महावाक्यों का सूक्ष्म अध्ययन और प्रयोग जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं। आपने साकार बाबा की पालना को प्राप्त किया और पिछले 52 वर्षों से आप बेहद मधुबन घर में भी अपनी सेवाएं देते हुए पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपने भारतवर्ष के साथ साथ देश विदेश के कई महाद्वीपों में भी अपनी ये आध्यात्मिक अलौकिक सेवाएं दी हैं। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के नेशनल चेयरपर्सन हैं। ऐसी अनुभवी ज्ञान रत्नों के होली हंस, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अनेक आत्माओं के जीवन को अलौकिक दिव्य बनाने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। आपसे हम निवेदन करेंगे कि आपने स्वयं अपनी भौतिक और आंतरिक चक्षुओं से पिताश्री ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था को देखा है, अनुभव किया है, उसके विषय में हमारे समक्ष मार्गदर्शन प्रदान करेंगे आदरणीय भ्राता जी, ताकि हम भी अपने इस अलौकिक जीवन में फरिश्ता स्वरूप स्थिति बनाते हुए, कर्मयोगी बनते हुए कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सके। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के उस रीति से ओम की ध्वनि करेंगे जैसा कि ब्रह्मा बाबा और सभी वत्स मिलके यज्ञ के आदि से किया करते थे, क्योंकि जब यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है तो बाबा भी किस रीति से ओम ध्वनि करते थे। पहले एक गहरी श्वास अंदर लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। प्रफुल्लित करने वाली ये ओम शांति की ध्वनि ही है जिसके आधार पर बाबा स्वयं को भी सदा प्रफुल्लित रखते थे और जो भी बाबा को देखता था वह भी जैसे सदा खुशी में झूम जाता था। बाबा इवन 93 इयर्स के 93 वर्ष के होने के बावजूद भी साकार ब्रह्मा बाबा ऐसे चुस्त और फुर्त थे कि उस समय हम तो बहुत यंग 22-23 साल के थे और बाबा के साथ कभी बाहर घूमने का मौका भी मिलता था, जाते थे तो बाबा तो साधारण रीति से जैसे चलते हैं, बड़े बड़े कदम से चलते थे और हम लोगों को तो प्रैक्टिकली दौड़ना पड़ जाता था। तो ये तो तन की बात रही है, दूर से ही बाबा का स्वरूप भी ऐसा था, लंबा कद, गोरा रंग, चमकती हुई आंखें एकदम, और सबसे बड़ा आंखों में ऐसा वात्सल्य भाव भरा हुआ। बाबा के सम्मुख जो भी आते थे बच्चे, बस बाबा देखते ही हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ओ स्वीट चिल्ड्रन। और बस उसमें इतनी ताकत होती थी कि मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह खींचते हुए सब चले आते थे। कोई देह का भान नहीं रहता था, स्त्री का, पुरुष का, बच्चे का, युवानी का, बूढ़े का, कोई नहीं। बस क्योंकि ये तो आत्मा का, आत्मा से और परमात्मा से मिलन होता था। देह तो जैसे बिल्कुल ही भूल जाती थी, और जैसे ही देह भूलती थी बस हम विदेही हो जाते थे। थोड़े समय उस विदेही स्थिति के आनंद में, जो कहा जाता है ना, गोप गोपियों से पूछो अतीन्द्रिय सुख क्या, तो बस ऐसे खो जाते थे। फिर बाबा धीरे धीरे, हाँ बच्चे आओ आओ बच्चे, जब कोई आत्मा, कोई जाती नहीं लेकिन आत्मा की कॉन्शियसनेस जैसे विड्रॉ हो जाती है, और बस उस परम शक्ति से मिलन मनाने का, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम लोग भी खींचते थे अपने शरीर में भी, फिर बाबा टोली देते थे, हालचाल पूछते थे, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, आदि आदि। और हम सब लोग भी वो बस जैसे आवाज में आने का दिल ही नहीं करता था, फिर भी बाबा को जवाब दे करके, और फिर जैसे थोड़ा विदेही स्थिति का अनुभव, एक जाता था दूसरा आता था और उसको भी वैसा ही अनुभव होता था उसी विदेही। तब उस समय तो नया भी कोई हो, दो चार छह मास का भी था, एक साल का भी विद्यार्थी होता था बाबा का बच्चा, कोई इन बात की क्लैरिटी भी नहीं होती थी इतनी कि अशरीरी अवस्था क्या है, विदेही अवस्था क्या है, बिंदी रूप स्थिति। लेकिन ब्यूटी तो यही है कि जब आत्मा खुद उस स्थिति में हो, और वो ही जैसे पत्थर होता है ना, हाँ, जो पत्थर को भी सोना बना देता है, क्या होता है, पारस। तो बस उसके संग में आते ही ना, जैसे आत्मा को स्मृति हो आती थी कि हाँ हम कैसे 5000 वर्ष पहले पारस आत्मा थी, इतनी पवित्र थी, शुद्ध थी, विश्व महाराजन थे, और वन बाय वन इस तरीके से सब मिला करते थे। ये तो बाबा से हर एक का जो मिलता था ये अनुभव, क्योंकि एक तो स्पर्श का अनुभव, काया भी ऐसी कंचन बन गई थी बाबा की, बिल्कुल लगता था जैसे बस लगे ही रहे बाबा के गले के साथ, छोड़ने को दिल नहीं होती थी। और ये तो स्थूल उसका, आत्मा का स्थूल रूप में जो अनुभूति की बात है, लेकिन सूक्ष्म में भी ये था। अंतिम 2-3 वर्षों में डॉक्टर ने थोड़ा बोला था बाबा को, क्योंकि उम्र भी बढ़ती जा रही थी और कई प्रकार के बच्चे बाबा के पास आते थे, तो इन्फेक्शन लगने का भी होता था, कई बार बाबा का तबीयत भी ऊपर नीचे हो जाता था। तो अंत में तो 1-2 वर्ष में बाबा बस दृष्टि ही अधिक देते थे, और ये अनुभव दृष्टि से भी हो जाता था। बस दृष्टि दी बाबा ने और तुरंत ही देह से न्यारे हो जाते थे। तो ये जो धीरे 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 बाबा में परिवर्तन भी हमने देखा, 62 में पहली बार ज्ञान में आए, 63 में जब मिले, और जब 69 में मिले, वैसे अनेक बार बाबा से मिले और बाबा हालचाल पूछते थे, सारा हम लोग बताया करते थे क्या हालचाल है, क्या सेवा चल रही है, कैसी हमारी स्थिति है, क्या लक्ष्य है, सब बाबा को बताया करते थे, और बाबा उसका समाधान करते थे, प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। हमें एक विशेष सौभाग्य भी प्राप्त है, वैसे तो साकार बाबा से मिलने का सौभाग्य ही बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन एक विशेष सौभाग्य ये है कि जब बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया था, अंतिम दो दिन 17 और 18 जनवरी 1969 तो उस समय हम बस मधुबन आ गए थे, 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए थे और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था अव्यक्त स्थिति देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कर्मातीत अवस्था क्या होती है, क्या लक्षण होते हैं, वो मैं कुछ यहाँ आपस में हम विचार करना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको भी जैसा बहन जी ने बताया कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना ही है और उस अवस्था में अपने को लाने का पुरुषार्थ करना है। वो अगर हमें मालूम होगा और प्रैक्टिकल कि इस देह में रहते हुए भी कोई व्यक्ति किस प्रकार से कर्मातीत अवस्था को इतने कम समय में प्राप्त कर सकता है। कितने समय में बाबा ने प्राप्त किया? सिर्फ लगभग 33 वर्ष में ही। उससे ज्यादा तो हम लोगों को, हमें ही 50 से ज्यादा साल हो गए, बहुत है 80 साल तक, 83 साल तक बाबा के। लेकिन हर एक का अपना अपना जो हिसाब किताब है कर्मों का, तो बाबा ने कैसे प्राप्त कर लिया इतनी जल्दी, अधर कुमार होते हुए भी, उल्टी सीढ़ी चढ़े हुए भी जो बाबा कहता है, और घर गृहस्थी में रहते, बिजनेस करते, धंधा करते भी, सबसे समेटते हुए कैसे प्राप्त कर लिया। तो 17-18 जनवरी को हम बाबा से लगभग 5-6 बार मिले अलग अलग समय, और सबसे बड़ी विशेषता कर्मातीत अवस्था की एक तो ये देखी, जब भी बाबा के सम्मुख जाते थे सोचते थे बाबा से ये पूछेंगे, तब तो बिल्कुल बाबा को हम लोग अपना ही जैसे आपस में बैठे हैं ऐसे ही समझते थे बाबा को, ये पूछेंगे ये पूछेंगे। और बस सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी, दृष्टि दे के बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो सोचा मन में वो ही एग्जैक्टली हुबहुब बिना किसी एक अक्षर के परिवर्तन के बाबा मन का हाल जान लेते थे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, और हर बार जब 6-7 बार ऐसा हुआ तो यही हमें आया कि कर्मातीत अवस्था का एक तो लक्षण यही है। इसको क्या कहेंगे? मन जीते जगत जीत। कहते तो हम सभी हैं मन जीते जगत जीत, लेकिन बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था, संकल्पों के ऊपर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि दूसरे के संकल्प को तुरंत ही रीड कर लेते थे और फिर उसका समाधान कर देते थे। तो पहला लक्षण तो कर्मातीत स्थिति का हमने ये अनुभव किया कि वाचा में कम से कम प्रैक्टिकली नील की तरह, लेकिन मन से ही दूसरे व्यक्ति का संपूर्ण हाल जान लेना, उसके मन में क्या चल रहा है, और केवल हाल ही नहीं जान लेना बल्कि अगर कोई प्रश्न लेके आया है तो उसका समाधान भी दे देना। तो एक तो ये देखा, और ये हम सब के लिए ही एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब भी अपने मन के ऊपर इतना विजय प्राप्त कर ले। जिसे बोलते भी है ना अंत में, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की भी अविद्या हो जाए। संकल्प आया सिद्ध हुआ, संकल्प उठेगा ही वो हो जो सिद्ध होने वाला होगा, दूसरा संकल्प उठेगा ही नहीं, एक भी वेस्ट थॉट नहीं उठेगा। और ये कर्मातीत अवस्था का एक मुख्य लक्षण वो देखा। दूसरा और बाबा का क्या देखा कि वैसे मधुबन में आते थे तो बाबा से सब मिलते थे, बाबा की गोद लेते थे, तो अक्सर बाबा तीन जगह मिला करते थे। अगर दो तीन बच्चे ही होते थे अपने कमरे में ही, बाबा का कमरा देखा है ना, तो पहले इतना बड़ा कमरा नहीं था, सिर्फ उतना ही था जहां तक कि पलंग है बाबा का, बस छोटा सा लगभग 6x8 का या 8x10 का रूम होगा बस। एक तरफ पलंग, एक तरफ बाबा की गद्दी पड़ी हुई और बीच में एक छोटी टेबल और कुर्सी, बस इतना ही बाबा का वो था। तो वहां पर बाबा बैठ के मिलते थे, नीचे जहाँ गद्दा पड़ा हुआ है वहां पर बैठते थे बाबा, बच्चों सामने बच्चे बैठ जाते थे और बाबा वहां मिला करते थे। तो एक दूसरा एक बड़ा लक्षण ये है कि आत्मा जब कर्मातीत अवस्था के निकट होगी तो एक चीज का उसे बहुत धीरे धीरे पक्का अभ्यास हो चुका होगा। कौन सा अभ्यास? बाबा ने इसको बताया भी है। हमारा सबसे बड़े से बड़ा पेपर और अंतिम पेपर कौन सा है? इस शरीर का पेपर, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो है ही, लेकिन ये शरीर के जितने भी हिसाब किताब आत्मा के 63 जन्मों के हैं तो सब तो चुक तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी बचे हुए हिसाब किताब हैं वो अंत में इस शरीर के द्वारा चुक तो करने हैं। इसलिए क्योंकि गायन है अंतमति सोगति का, अंत में अगर कोई भी हिसाब किताब रह गया, कोई स्नेह का बंधन भी हो, कोई भी घृणा की बात हो, शरीर का हिसाब किताब हो, कोई भी कहीं भी व्यक्ति वस्तु वैभव कोई भी अगर थोड़ा भी अपनी तरफ अगर खींच रहा होगा अंत में, तो वो हमें कर्मातीत नहीं बनने देगा। उस जगह जाके फिर हमें जन्म लेकर के बचे हुए हिसाब किताब चुकतू करके तब फिर अगला जन्म, और बाबा ने तो बताया है नेक्स्ट अगर जन्म लेना पड़ा तो क्या होगा, 10-12 साल तो वेस्ट ही हो जाएंगे बच्चे से, जब तक थोड़ा समझने लायक हुए वो सारा वेस्ट हो जाएंगे पूरा। तो इसीलिए अभी लक्ष्य यही होना चाहिए कि किसी भी तरह करके मुझे इस जन्म में और इस शरीर में ही संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, और ये लक्ष्य रहेगा चाहे जितनी भी भोगना हो। तो ये हमें याद आता है बाबा की बात की, जब बाबा चले गए तो बच्चों ने पूछा, बाबा अंतिम समय आपकी स्थिति कैसी थी, आपको क्या अनुभव हुआ? तो बाबा ने बताया, बच्ची अंतिम 10-15 मिनट का खेल था अंत में, एक तरफ कर्म भोग और दूसरी तरफ योग बल, इन दोनों की बहुत गहरी युद्ध चल रही थी, और शरीर के जो बचे हुए कर्म भोग थे बहुत बहुत दर्द हो रहा था, जैसे हार्ट का बाबा को तो कई बार साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है ना, शरीर तो सबको ही छोड़ना है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये शरीर के साथ ही जाएगा सतयुग में, छोड़ना है, लेकिन कौन सी सबसे अच्छी मृत्यु है? बस जाना तो है ही है, लेकिन ये हार्ट जैसे प्रॉब्लम हुई, अटैक आया, बाबा का बुलावा आया और चलते हैं। फिर भी ये भी 10-15 मिनट का, मिनट कितने होते हैं, और बहुत एक्यूट पेन हो रहा हो तो एक तरफ तो जैसे वो दर्द की स्थिति थी, दूसरी तरफ योग बल था, लेकिन शुरू में कर्म भोग का पलड़ा भारी था, बहुत तेज कर्म भोग हो रहे थे और योग बल का था लेकिन वो हल्का था। फिर धीरे धीरे जैसे योग बल का पलड़ा भारी होता चला गया, बाबा की याद आती रही। और उस समय बस दो तीन बात थी बुद्धि में, कौन सी बात, कि बाबा आप मुझे बुला रहे हो, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पूरा आभास हो गया था। वो तो बाबा को दो दिन पहले से हो गया था, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बाबा को आभास हो गया था। तो बाबा आप बुला रहे हो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दूसरा, पवित्र स्नेह का बंधन बच्चों का खींच रहा था, मोह नहीं बल्कि जिनके साथ रहते हैं जस्ट पवित्र स्नेह का, प्रेम का बंधन। और तीसरा, अनुभव हो रहा था कि कैसे आत्मा इस शरीर के एक एक अंग से अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है, यहां से छोड़ी अंगूठे, पैर के अंगूठे से, और ये आत्मा की शक्ति कर्म होते 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 एकदम जैसे भ्रगुडी में आके ही आत्मा रही, बाकी सब जैसे कि शरीर के अंगों से आत्मा ने शक्ति खींच ली। और उसके बाद जैसे मक्खन से बाल की तरह जब योग बल पूरा भारी हो गया और कर्म भोग का हिसाब चुकतु हो गया तो आत्मा चली। तो अंत समय जब ब्रह्मा बाबा का भी नंबर वन की भी, उसको भी अंत में थोड़ा ये युद्ध की स्थिति रही, कर्म भोग और योग बल की। तो ऐसे ही बचे हुए जितने भी अगर होंगे वो हमें भी उसको फेस करना पड़ेगा। और उसके लिए बेस्ट क्या है वो बाबा ने बताया, उसके लिए बेस्ट यही है कि बाबा ने कहा एक अभ्यास से बच्चे इस पेपर से, फाइनल पेपर से पास हो जाएंगे। कौन सा अभ्यास? जब चाहे हम शरीर में आए पाठ बजाएं, जब चाहे शरीर से न्यारे हो जाएं। ये अभ्यास पक्का होना चाहिए। और ये ब्रह्मा बाबा को अभ्यास बहुत पक्का हो गया था। हम देखते थे बाबा से जब मिलते थे, चाहे बाबा के कमरे में मिले या बाबा की झोपड़ी में मिले, जब सात आठ लोग होते थे तो बाबा झोपड़ी में मिला करते थे क्योंकि कमरा तो छोटा था, आएंगे नहीं। और जब इससे भी ज्यादा बड़ी पार्टी 12 15 20 होते थे तब बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो इन तीन जगह बाबा मिला करते थे। और बाबा को ये अभ्यास पक्का कैसे हो गया था, ये अनुभव में आता था क्योंकि एक लच्छू दादी थी, वो अपॉइंटमेंट देती थी कि अच्छा 10 बजे दिल्ली पार्टी आएगी, उन्हें मिलना है, 10:30 बजे बम्बई पार्टी आएगी, 11 बजे कलकत्ता पार्टी, लगभग ऐसे आधा घंटे का स्लॉट होता था। तो बाबा जब बस जैसे टाइम हुआ पार्टी, जो टीचर इंचार्ज होती थी वो आती थी और देखती थी बस बाबा बैठे हैं और आंखें भी खुली हुई हैं, लेकिन बाबा का ध्यान जैसे कहीं और है, कोई ध्यान में साक्षात्कार में भी नहीं, आंख बंद भी नहीं, लेकिन बुद्धि से जैसे बाबा एकदम शरीर से न्यारे। वो आके कहती थी बाबा बाबा, तो बाबा को थोड़ा जैसे एकदम ना शरीर में आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता, थोड़ा करा, हाँ बच्ची बोलो, बाबा मैं ऐसे फलानी पार्टी लेके आई हूँ और टाइम हो गया, तो हाँ बच्ची लाओ लाओ सब पार्टी वालों को बुलाओ, तो सब आके बैठ जाते थे और बाबा मिलते थे। उसके बाद जब बाबा मिल लिए हर पार्टी वाले को, वो जाती थी पार्टी और दूसरी पार्टी के आने में मानो 5-7 मिनट का टाइम होता था, तो उस समय बाबा फिर न्यारे हो जाते। यानी कि जब पार्टी का आने का समय है तो आ करके अपना पार्ट बजाया, बच्चों को मिले, स्नेह दिया, टोली खिलाई, और जब इससे फ्री हुए, भले 5-7 मिनट का टाइम है लेकिन फिर बाबा एकदम देह से न्यारे हो जाते थे, फिर बाबा का अपना पर्सनल पुरुषार्थ चलता था। तो ये जाने और आने का अभ्यास बाबा को इतना पक्का हो गया था। और यही बाबा अब हम बच्चों से चाहते हैं, कि जब हमें पार्ट बजाना है, काम करना है, कोई भी लौकिक अलौकिक जो ड्यूटी मिली है, तो हम देह में आए, जब चाहे अपनी इच्छा से आए, पार्ट बजाया, जब चाहे न्यारे हो जाए और फिर बाबा के साथ रूहान मगन स्थिति में हो जाए। ये बाबा का दूसरा स्वरूप कर्मातीत अवस्था का देखा। तीसरी बात, जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाती है, उससे पहले से ही जैसे आत्मा ना सब समेटना शुरू कर देती है, क्योंकि अंत समय में क्या होता है, भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं, जब अंत समय होता है तो प्राण जैसे अटके रहते हैं, लौकिक भाषा में बोलते हैं ऐसे, और भाई जहां पर व्यक्ति का कनेक्शन होता है सूक्ष्म, व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, कोई भी बात है, कोई पेंडिंग वर्क है, वो कोई है, तो हम सब का अभ्यास है, मालूम है, योग भी करेंगे, अगर कोई काम बाकी हुआ है, यज्ञ का बचा हुआ काम है, हमारी ड्यूटी का बचा हुआ, वो अक्सर करके बुद्धि में आ जाता है, ये करना है जाके। और इस रीति से क्या होता है, बुद्धि वहीं पर जाती है जहां पर कुछ ना कुछ व्यक्ति का कनेक्शन होता है। तो बाबा का हमने देखा, इतना बड़ा यज्ञ सब कुछ था, लेकिन बाबा धीरे धीरे समेटते जा रहे थे। 67 के बाद से हमने देखा कि पहले बाबा बैठते थे, बहुत बात करते थे, लेकिन बाद में बहुत समेटते जा रहे थे, बस बच्चों से एक्सपेक्ट करते थे एक दो लाइन में बाबा बच्चे कुछ बोले, बाबा उसका जवाब दें, बस इस तरीके से। तो अंत में ब्यूटी यही है, हम भी शरीर तो छोड़ेंगे, लेकिन अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, ये नहीं कि सडनली अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, जमीन हिली, भूचाल हुआ या कोई, तो बाबा ने भी जैसे बाबा को आभास हो गया था एक दो दिन पहले से ही कि हाँ अब मेरा यहाँ का पार्ट पूरा हुआ और अब बाबा बुला रहा है। कैसे पता चला, बाबा के कई एक्टिविटीज से। 18 जनवरी की सुबह हम तो यहीं थे, तो बाबा ने आके उस दिन योग कराया, कोई मुरली नहीं चलाई, योग बाबा आए, बैठे, योग कराते थे, तो बस योग में बैठे, फिर ऐसे करके थोड़ा गला साफ करते थे, तो हम लोग तैयार हो जाते थे डायरी पेन लेके, अब बाबा मुरली चलाएंगे। फिर बाबा एकदम उस दिन मुरली नहीं चलाई, फिर बाबा योग कराने लगे। तो ऐसा हर बार हुआ, 10-12 बार हुआ सुबह के मॉर्निंग योग में, और बाबा ने मुरली का एक शब्द भी नहीं चलाया 18 जनवरी की सुबह, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए। तो एक तो ये कि बच्चों में शक्ति भरने का काम बाबा ने किया, मुरली तो 1936 से लेकर सदा चलाते रहे, पूरा हुआ भी, लेकिन उस दिन बाबा ने केवल शक्ति भरी। क्लास के बाद बाबा आए, यीशु दादी को बोला आते कि आज जितने भी पत्र हों उनके जवाब आज लिखवा लो, पेंडिंग, कोई भी एक भी पत्र बिना जवाब उत्तर दिए न रह जाए, कोई भी बच्चे का उलाहना न हो। उस वक्त तो कोई भी समझे नहीं, लेकिन बाबा को तो मालूम था कि इसके बाद तो कभी फिर ऐसी स्थिति आएगी नहीं। तो उस दिन यीशु दादी ने सारे पत्रों के जवाब लिखा लिए। एक तो इससे आभास हुआ कि बाबा को आभास था कि आज मैं जाने वाला हूं। दूसरी बात, आपने देखा होगा नक्की लेक के पास म्यूजियम है ना, अपना गए है ना, तो वो बिल्डिंग उस समय जो बिल्डिंग ली नहीं थी, लेकिन वहां पर 8-10 दिन के लिए लेकर प्रदर्शनी लगाई थी हम लोगों ने, और प्रदर्शनी लगी हुई थी, और उस प्रदर्शनी के द्वारा बहुत सेवा हुई, क्योंकि वहां से सनसेट पॉइंट से जब लोग लौटते हैं तो बहुत भीड़ होती है, तो बाबा को समाचार सब देते थे, बाबा ये मकान तो ले लेना चाहिए, यहाँ पर बहुत सेवा का स्कोप है। लेकिन तब हमारे यज्ञ के पास इतने साधन नहीं थे, इतना संपत्ति नहीं थी कि उसे ले लेते, तो कई दिन तक वो पेंडिंग पड़ा रहा। लेकिन उस दिन बाबा ने उसका भी डिसीजन लिया, हाँ बच्चे उस मकान को ले लो, और उस फाइल में बाबा ने साइन करा मकान लेने का। ये पेंडिंग काम पड़ा हुआ था, नहीं तो अंत समय में वही बात याद आती रहती, उस बात को निपटा दिया। तीसरी बात, कई जितनी बातें थी यहाँ तो मुझे तो कुछ इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन एक बात ये कि रोज मधु यहाँ पर मुरली रात्रि क्लास कितने बजे होती है, लगभग लगभग 8:45 होती है, ऐसा ही होती है ना। तो ये साकार बाबा के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन उस दिन बाबा ने शाम को 6:30 ही जमुना प्रसाद भाई को बोला, आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा और सब बच्चों को इन्फॉर्म कर दो। तो यहाँ एक घंटी रखी रहती थी, उसे बजा के और उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया सब। और बाबा ने खास इंस्ट्रक्शन दी कि सब बच्चों को कहो कि भोजन करके क्लास में आए, क्योंकि बाद में तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि भले भोजन पका हुआ भी रखा रहे लेकिन कोई खा ही नहीं सकता था, क्योंकि नियति का यही विधान था कि बाबा को शरीर छोड़ना था। तो उस दिन बाबा ने जल्दी कह के जल्दी क्लास का इन्फॉर्म करा सबको, और एक बच्चा आ गया और बाबा भी क्लास में आ गए। हम भी यहाँ बात की, बाहर की पार्टियां तो ज्यादा नहीं थी, हम और हमारे लौकिक पिताजी हम दो ही आए थे, यहाँ पर क्लास में थे, सामने बैठे हुए थे, बाबा भी क्लास में आए। तो ठंडी के मौसम थे जनवरी में, और उन दिनों तो बहुत ही ठंडी होती थी, तो बाबा जब क्लास में आए, एक दो दिन से बाबा को कुछ खांसी वगैरह भी काफी थी, कफ था। तो 17 जनवरी को भी हमने मुरली सुनी थी, शाम का भी मुरली, और तो बाबा को कफ आता, खांसी का प्रॉब्लम होता था। लेकिन 18 जनवरी की रात्रि क्लास आप सुनो, जो यहाँ मिलती है ओम शांति भवन के नीचे, जो कैसेट रूम वगैरह है, पेन ड्राइव भी है और सीडी वगैरह भी मिलती है, एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी 18 जनवरी की रात को रात्रि क्लास में। तो जो इस बात को दर्शाता है कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। एक बार भी बाबा को गला साफ करने की और खांसी की वो आई नहीं, वो प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो अंत समय के लिए हमें भी अपने को ये तैयार करना है कि शरीर के कर्म भोग तो होंगे, अंत तक होंगे और बहुत विकट होंगे, लेकिन हमें एक अभ्यास पक्का होना चाहिए जो था कि कोई भी परिस्थिति आए लेकिन मेरी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो कि मैं स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लूं। और बाबा का हमने देखा था, कई बार बाबा को जब खांसी आती थी, खांसी रूपी परिस्थिति बड़ी विकट होती थी, कई बार हम लोग देखते थे खांसते खांसते बाबा की आंखें भी एकदम गीली हो जाती थी, देखकर हम लोगों को भी लगता था कि शायद बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन खांसी रूपी परिस्थिति जैसे ही आई तो बस बाबा के अभी भी हिस्ट्री हॉल में पहले 3 संदली रहती थी, 2 संदली दोनों तरफ और एक बीच में, एक पर बाबा बैठते थे, एक पर मामा बैठते थे, और बीच में बच्चों के लिए वो खाली रहती थी। और जब आते थे बच्चे, आते थे अपना हालचाल सुनाते थे, परिचय देते थे, और जाने से पहले भी फिर बच्चे अपना क्या लक्ष्य लेके जा रहे हैं वो सब सुनाया करते थे। तो बाबा के संदली के पास ही ट्रांसलाइट का चित्र रहता था श्री कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का। और कई बार बाबा कहते थे जब खांसी रूपी परिस्थिति आई और बहुत, तो फिर देखो बच्चे अभी तो ये पुराना शरीर है, पुराने तत्व हैं, ये पांच तत्व, इन तत्वों का बना शरीर है, कितना इस शरीर को भी तकलीफ होती है, तत्व भी तब वो प्रधान हो गए हैं, लेकिन बच्चे देखो हम लोग ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, बस बच्चों को ये खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए कि हम इस दुनिया में जा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करके, बस जहाँ पर कोई भी तत्व भी सतो प्रधान होंगे, शरीर भी सतो प्रधान और कोई भी कष्ट नहीं होगा। और ये बाबा स्वस्थिति का वर्णन करते करते ऐसी स्वस्थिति मजबूत बना लेते थे कि खांसी रूपी परिस्थिति भी आती थी, विकट होती थी शुरू में, लेकिन स्वस्थिति बलशाली होती चली जाती थी, परिस्थिति कमजोर होती चली जाती थी और स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते थे। तो हम बच्चों को भी यही अभ्यास होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, चाहे तन की हो, मन की हो, संबंध की हो, पेपर तो सबके सामने ही आते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आए वो हम पर हावी ना हो जाए, बल्कि मेरी स्वस्थिति ऐसी हो कि इतनी बलशाली मैं उसे कर लूं कि वो परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाए, परिस्थिति कमजोर हो जाए, परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले। ये बाबा को हमेशा देखते थे, ये बाबा को एक ये अभ्यास भी बहुत पक्का हो गया था कि बस स्वस्थिति बाबा की मजबूत हो थी। यज्ञ पिता थे बाबा, इतने सब तरफ से समाचार आते थे, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई समस्या है, सब होते हुए भी ना बाबा एकदम सुन करके भी, सबसे बड़ी खूबी बाबा में कौन सी थी, जो भी परिस्थिति हो क्षमा भाव। महान आत्माओं का सबसे बड़े से बड़ा दैवी गुण बहुत सारे होते हैं, सब होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लक्षण है क्षमा भाव का। कहते भी है ना, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का लक्षण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। उसके मन में ये होगा, अच्छा इसने मेरे साथ ये किया, मैं भी जब समय आएगा मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं, मैं भी इससे भले बदला लेने की भावना होगी, लेकिन ये बदला भी उसके मन के अंदर ही, सबसे पहले तो मनुष्य अपने से ही बदला लेता है, अपने अंदर ही अंदर निगेटिव भाव आते रहेंगे, अंदर ही अंदर जलता रहेगा, फिर तो परिस्थिति अनुसार दूसरे का साथ क्या व्यवहार हुआ वो तो जब हुआ, लेकिन उससे पहले कई दिन तक वो अपने अंदर ही अंदर घुसता रहता है। तो इसीलिए क्षमा जिनमें होगी उनका न तो ये टाइम वेस्ट जाएगा, न बदले की भावना होगी, और बिल्कुल एक सेकंड भी उनका वेस्ट नहीं होगा। बस हाँ, क्षमा की है, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। तो ये क्षमा भाव से जो महारथी होंगे, वीर होंगे, विजयी आत्मा होंगी, वो हमेशा दूसरे ने हमारे साथ जितना भी नेगेटिव किया है, जितना भी हमारे ऊपर उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है, हमारे लिए समस्या क्रिएट की है, पैदा की है, लेकिन हमारे मन में कभी भी उसके लिए नेगेटिव भाव ना हो, ये बाबा का देखा। और क्या देखा बाबा में ना, ये स्वस्थिति से परिस्थिति पर। तो अभी हम ये चेक करते जाएं कि मेरा पेंडिंग काम कौन सा है, बचा हुआ काम जहां पर मेरी बुद्धि जा सकती है। जब अंत में असमय आएगा, प्राण निकलने का समय होगा, तो प्राण अटके रहेंगे जहां पर भी हमारा लगाव झुकाव है, तो इसीलिए सब तरफ से अपना जो है मानो विल करनी है। यहाँ मधुबन का एक समाचार सुना दें, कई साल यहाँ मैं लगभग 24-25 साल से हूँ, देखते हैं कि बहुत जगह हमारे भाई बहन शरीर छोड़ते हैं, उनके लौकिक अलौकिक परिवार वाले भोग लगाने के लिए मधुबन में आते हैं। तो कई बार ये देखने को मिलता है जब उन आत्माओं के लिए बीके आत्माएं हैं, उनको जब भोग स्वीकार कराते हैं तो वो आत्मा भी भोग स्वीकार करके, और कई बार उसकी आंखें भी नम होती हैं और कहते हैं बाबा बस मैं बहुत समय से सोच रहा था मैं ये करूंगा, सेंटर बनाऊंगा, ये यज्ञ के लिए ये करूंगा, बच्ची को इसमें सेवा में लगाऊंगा वगैरह वगैरह, लेकिन मैं टालता रहा, ठीक है कल कर लूंगा, ये अभी तो समय पड़ा है और फिर मैं तो आ गया, अभी मैं क्या करूं। तो बहुत उसको पछतावा जैसे होता है। तो ऐसे ही हम जो है ना कोई काम को बस टालते ना रहे, पेंडिंग जो करना है वो करना है, सफल करो तो सफलता मुहूर्त बन जाएंगे, और उस टालने से क्या होगा समय का तो पता नहीं। तो कोई काम पेंडिंग रह गया तो अंत समय वो हमारे प्राण नहीं निकलने देगा, जो बाबा ने बताया ना युद्ध चलेगी, बचा हुआ कर्म भोग होगा वो हमें उधर की तरफ खींच लेगा। तो एक ये देखा, तो अंत समय में देखा बाबा 18 तारीख की मुरली चला रहे थे, 18 जनवरी हम भी सामने बैठे हुए थे, तो एकाएक ही हमारे मन में विचार आया, बस संकल्प आया कि भई बाबा कुछ हमारे लिए बोले, क्योंकि हम बहुत दूर पोस्टेड थे आसाम में, और वहां पूरा 1000 मील तक कोई सेंटर ही नहीं था, पास में पास भी कलकत्ता था और बहुत दूर, सबसे विदेश में तो कोई सेंटर नहीं था, सबसे दूर से दूर, लेकिन बाबा का वायदा था कि बच्चे कोई बात नहीं, दूर बाबा तुम्हें भेज रहा है, जब समय होगा बाबा तुम्हें बुला लेगा। और वाकई 17 जनवरी को हम पहुंच गए, बाबा ने एक जैसे स्पेशल मैसेज से हमें बुला लिया, अंत समय आ गए और ये बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बस अंत समय में हम 18 जनवरी की मुरली सुन रहे थे, विचार आया बाबा कुछ बोले। अब बाबा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुई आत्मा थी, तो जो संकल्प भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, भक्त के मन में संकल्प उठा मुझे ये चाहिए, तपस्या की और भगवान खुश हुए, भगवान ने कहा हाँ मांगो वरदान, भक्त के मन में जो इच्छा हुई तो भगवान के मुंह से क्या निकलता था, तथास्तु, बस, और भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। भक्ति मार्ग में तो अभी वही तो है, हम सब भी तो बाबा के द्वापर युग के बाद से भक्त हैं, द्वापर की आत्मा तो कृष्ण की आत्मा, सतयुग आदि की आत्मा, और तो इसी वजह से तो द्वापर से लेकर के हम लोग कृष्ण की भक्ति, क्योंकि सतयुग में बाबा की राजाई में है, बाबा के साथ साथ राज्य करेंगे, और द्वापर युग से फिर भक्ति करते हुए कलयुग अंत तक आएंगे और संगम युग में बाबा की प्राप्ति होगी। तो बस जैसे ही संकल्प उठा बाबा तक पहुंचा, और बाबा की इतनी ऊंची स्थिति, तुरंत ही बाबा ने मुरली में नाम लेके हमारा, देखो ये बच्चा मोहन है, बस बहुत महावाक्य, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, बस उस दिन की मुरली चल रही थी 18 जनवरी की, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सह। तो बाबा ने जैसे ये बोल के बस मन में जो भी संकल्प था बाबा ने एकदम पूरा करके, फिर बाबा ने कहा अच्छा बाबा, बच्चों से बाबा गए दरवाजे तक और बाबा ने याद प्यार दी, गुड नाइट। बाबा ने एक अक्षर बोला, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। इससे पहले बाबा ने ये अक्षर कभी नहीं बोले, छुट्टी लेता है, विदा लेता है। बाबा को साफ आभास हो गया था कि बस अब मैं जा रहा हूं, ये बच्चों से इस साकार शरीर के द्वारा मेरा अंतिम मिलन है, ऐसे अंत समय में हम बच्चों को भी यह आभास होना चाहिए। और वो तब होगा जब हमने एक तो सारे बंधन काटे हुए होंगे, नहीं तो कोई ना कोई बंधन हमें खींचेगा। और जो हमारी जो ये बुद्धि की लाइन है ये बिल्कुल क्लियर होगी, तो अंत समय बाबा का जब बुलावा आएगा, अगर दो चार काम कोई पेंडिंग रह भी गए, जो बाबा का साकार बाबा का भी देखा ना, ये सब काम पत्रों के जवाब देने थे, किले का मकान लेना था आदि आदि, वो सब बाबा के बचे हुए काम भी बाबा ने अंतिम दिन पूरे करके फिर बस, हाँ बाबा अब आई एम रेडी, आओ मैं आपके पास आया कि आया। और वही बाबा ने अनुभव किया कैसे आत्मा शरीर छोड़ रही है, फिर बच्चे बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है, कह के बाबा गया कमरे में जाके दादी जी के हाथ में हाथ, और बाबा ने विदा ली। लेकिन इसके बीच में भी 17 जनवरी के जब बाबा मुरली चला रहा था, वो आप पढ़ोगे रात्रि क्लास, बाबा ने कहा जब बच्चे यहाँ आते हैं मधुबन में, बेहद का मकान है, बेहद खुली छत है, यहाँ पर बच्चे बहुत विचार सागर मंथन करें, बाबा ने जो कहा है उसको सिमरण करें। तो 18 जनवरी की रात्रि क्लास तो जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि तो 18 जनवरी की रात्रि क्लास तो पूरी हो गई थी, तो हम छत पर टहल रहे थे हिस्ट्री हॉल की, तो हमने देखा जमुना प्रसाद भाई यहाँ पर है, साइकिल पर बड़ी तेजी से बाहर जा रहे हैं। तो हमने ऊपर से पूछा, अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात में साइकिल पर? तो उन्होंने कहा कि दादी जी ने मुझे भेजा है, भेज रहे हैं कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो डॉक्टर को बुला के लाओ। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। तो वो तो बाहर गए, हम भी ऊपर से नीचे आके बाबा के कमरे में, ये कमरा तो बाद में एक्सटेंड किया गया, पहले वही छोटा कमरा था, और उसका दरवाजा अभी भी पीछे की तरफ से है। हाँ, जो पुराने हैं उन्हें मालूम होगा, तो पीछे की तरफ से, तो हम पीछे की तरफ से बाबा के कमरे के बाहर जाके देखा, तो बस दादी जी जैसे खड़े हुए हैं, दादी जी का पीठ जैसे हमारी तरफ तो हम देख रहे हैं, उनके आगे जैसे बाबा वो ढक गए, जैसे बाबा चारपाई पर बैठे हुए हैं और दादी जी के हाथ में हाथ, वो स्थिति जस्ट देखने का सौभाग्य मिला अंत में। लेकिन हम तो फिर बाहर आ गए, और उसके बाद तो फिर बाबा ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन ब्यूटी क्या है कि देखो, अंत समय में जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, और सारी रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। न कोई इंजेक्शन लगाया गया था बाबा को, न कोई केमिकल्स का कोई लोशन लेप किया गया था, लेकिन न बाबा के शरीर में से कोई दुर्गंध थी, न शरीर काला पड़ा, बिल्कुल वैसा ही गोरा और चमकता हुआ शरीर जैसे बाबा सो रहे हैं, और हमेशा की तरह बाबा उठ के कहेंगे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। तो ये है, ये शरीर का क्या है, ये 5 तत्वों का बना शरीर है। तो जैसे मन जीते जगत जीते, ऐसे ये प्रकृति जीत का लक्षण है, कि कैसे बाबा ने प्रकृति के तत्वों को भी इतना सतोगुणी बना दिया था योग तपस्या के द्वारा, कि अंत में इन 5 तत्वों से बने शरीर ने भी बाबा का पूरा साथ दिया, और अंत तक भी बिल्कुल वैसा, जब बाबा को लाया गया, स्नान कराया गया, और यहाँ पर संस्कार किया गया जहाँ शांति स्तंभ में है, बिल्कुल ऐसे ही चमकता हुआ शरीर, लाइट का सा शरीर, बिल्कुल वो अनुभूति होती थी। तो ये है प्रकृति जीत का प्रतीक, और इसका वरदान बस एक दादी जी जानकी दादी को भी बाबा ने दिया है। आप लोगों ने भी सुना होगा पिछली सदी है जो 1999 31 दिसंबर आखिरी दिन उस सदी का, अगली सदी शुरू होने वाली थी। दादी की तबीयत बहुत खराब थी, अहमदाबाद में लोटस में थे। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कुछ नहीं हो सकता, जिसको बुलाना है बुला लो। और जयंती बहन वगैरह भी आ गए थे दादी जी के पास थे, तो बहुत तबीयत। तो 31 दिसंबर को तो बाबा आते हैं, तो गुलजार दादी में बाबा आए हुए थे। और मुरली के बाद अपनी प्रकाशमणि दादी और निर्वैर भाई दोनों बाबा के सम्मुख गए, बाबा को बताया बाबा जानकी दादी की तबीयत तो बहुत खराब है और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। तो बस बाबा ने तो एक शब्द बोला, बच्ची कुछ नहीं होगा उसे, वो प्रकृति जीत आत्मा है। बस एक लाइन बोली, तो देखो कहां 1999 और कहां 2019, 20 साल हो गए। अभी भी आज के दिन दादी लंदन में है, पहले स्पेन में थी, और देश विदेश की ऐसी सेवा कर रही है जो 103 वर्ष की होते हुए भी जो और हम और आप भी नहीं कर सकते, इतनी भागा दौड़ी इतना सब जगह जाना। ये प्रकृति जीत का लक्षण है। ब्रह्मा बाबा के भी अंतिम दिन वो ही दिखाई दिए, प्रकृति जीत का लक्षण। और हम बच्चों को भी ये बनना है तो प्रकृति जीत बनने के लिए भी, मन जीते जगत जीत के लिए तो हम सब पुरुषार्थ कर ही रहे हैं संस्कारों को जीतने का और ज्ञान योग सबसे, लेकिन प्रकृति जीत बनने के लिए भी हम लोग प्रतिदिन कम से कम 5-10 मिनट प्रकृति के तत्वों को योगदान करें। बाबा ने उसकी विधि भी बताई है, मानो जल तत्व है। हम देखते हैं जब हम वार्तालाप करते हैं, मुझे याद आता है कि 1996 की बात है, हमारा पर्यावरण जागृति अभियान केरल में कन्नानूर के पास था। और पहले तो इतने सब साधन होते नहीं थे कम्युनिकेशन के, मोबाइल और इंटरनेट और ये सब। तो मुरली छप के जब 2-3 दिन बाद आती थी तब सब पढ़ा करते थे, और पहले बीच में टेली प्रिंटर से कुछ कुछ जगह मुरली भेज दी जाती थी। तो कन्नानूर में भी बहुत बड़ा सी बीच है, समुद्र का किनारा, वहां बसा शहर है। तो वहां बाबा की मुरली रात को हम लोगों ने पढ़ी, 96 की बात है, कि बाबा ने कहा ये 5 तत्व भी देवता हैं, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, धरती माता, ये सब कहते हो, ये भी दाता है और आप होवनहार देवता हो, तो आप इन तत्वों के साथ वार्तालाप करो, उनसे शेक हैंड करो। अब बाबा ने बताया जैसे कि कोई मानो जल देवता है, ऐसे वार्तालाप की विधि बताई थी। तो हम लोगों ने ये फिक्स किया कि चलो कल सुबह सेंटर की कुछ बहनें और पर्यावरण जागृति अभियान के 10-12 भाई बहन थे, हम सब लोग मिलके समुद्र के किनारे ये योग का प्रयोग करेंगे जल के साथ, क्योंकि जल देवता कहते हैं। तो सुबह 4:15 बजे हम सब वहां पहुंच गए, और समुद्र से बहुत दूर थे, काफी दूर रेत में वहां बैठ गए, और समुद्र बिल्कुल शांत था। और बाबा ने जो वार्तालाप की विधि मुरली में बड़ी अच्छी, उनसे कहो कि आप भी देवता हो, हम भी ओवनार देवता है, आओ हम दोनों मिलके शेक हैंड करें और मिलके इस तत्वों को भी पावन बनाएं। और यदि आप तक हमारी संवेदनाएं पहुंच रही हैं जल देवता, तो आओ हमारे होवनहार देवताओं के चरण स्पर्श करो, शेक हैंड करो। बैठे बहुत दूर है और समुद्र भी बिल्कुल शांत है, एक भी लहर नहीं उठ रही है। 4 बजे से योग करना शुरू किया, 4:15, 4:30, 4:45, 5 बजने में बस 5 मिनट ही थे, पता नहीं कहां से एक बहुत बड़ी लहर आई और पानी की, और बहुत जहां पर हम लोग बैठे थे इतनी दूर, 1.5 फरलांग दूर होगी करीब, बस आए जहां हम बैठे थे वहां, जैसे सांप के चरण स्पर्श करके गीला करके जैसे वो लहर चली गई। तो ये बाबा के साथ जब कभी भी हम योग के प्रयोग करते हैं, ऐसे तो कितने उदाहरण है, वेदांती बहन ने रोबी वाले उनके भी उदाहरण है, उन्होंने सुनाया था कई बार अनेक बार तत्वों का कैसे किस प्रकार से ये हमारी रक्षा करते हैं। बहुत सारे प्रयोग हैं, अभी तो समय हो गया है, लेकिन तत्वों को भी हम अपना मित्र बना लें, क्योंकि भारतवासियों के लिए तो ये तत्व ही मृत्यु का कारण बनेंगे। विदेशों के अंदर एटम बम गिरेगा, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, ये सब, लेकिन भारत में तो ये अर्थक्वेक आएंगे, फ्लड आएंगे, सुनामी आएगी, ये साइक्लोन आएंगे, और इन सबसे ही अधिकतर मृत्यु होनी है। बाबा ने बताया यहाँ तो सिविल वार और या नेचुरल कैलेमिटीज। तो इसके लिए बस अंत मते सो गति का गायन है ना, तो हम तत्वों को अपना मित्र बना ले। और मित्र कभी मित्र की जान नहीं लेता, मित्र मित्र की रक्षा करता है। तो भाव क्या है, हम मानो जल को मित्र बना लें। मित्रता उनके बीच में होती है जिनके संस्कार एक जैसे हैं, मिलते हैं। तो जल का कौन सा बहुत संस्कार है, जल का कौन सा बड़ा से बड़ा संस्कार है, शीतलता, और जल का है एडजस्टमेंट का संस्कार। गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, थाली में लो, थाली में, फ्लेक्सिबल है जल। ऐसी मुझे भी अपने संस्कारों को फ्लेक्सिबल रखना है, हर एक के साथ मैं एडजस्ट होके चल सकूं। ये ना कहूं कि इनके साथ तो एडजस्ट होना आसान है, इनके साथ मुश्किल है, नहीं, सबके साथ मिलके मैं हर एक के साथ एडजस्ट होके, इसका मतलब जल का संस्कार हमने धारण कर लिया, तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। समय पर जल हमें सिग्नल दे देगा, और जिससे कि हम उस परिस्थिति से दूर हो जाएंगे, और जल हमारी रक्षा का कारण बन जाएगा। ऐसी धरती का सबसे बड़ा कौन सा गुण है, पृथ्वी का धरती का है दातापन का। पृथ्वी हर एक को देती है, वहीं से अन्न मिलता है, जल मिलता है, वहीं से फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, धरती तो पैदा करती है। ऐसी अगर हमने भी अपना दातापन का संस्कार धारण किया होगा, हमारे सम्मुख जो भी आए कुछ लेकर के जाए, खाली हाथ न जाए। क्या स्थूल चीज की बात नहीं है, हमारी शुभ भावना, शुभकामना, सहयोग, सद्भावना, हमारा प्रेम, जिसमें खर्चा कुछ नहीं होता इन सब चीजों में, तो इन चीजों के हम जितने दाता बनते रहेंगे, इसका मतलब धरती के हमने गुण धारण कर लिए, धरती भी दाता है, और हमारा मृत्यु का कारण जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, बाबा ने कहा है इतना भयंकर अर्थक्वेक आएगा, वहां तक विनाश होगा आप देखोगे, लेकिन वहीं पर खत्म हो जाएगा, आप तक वो नहीं आएगा, जिन्होंने धरती को का ये गुण धारण। बहुत गुण है, लेकिन या तो मैं रिफर कर रहा हूं एक एक गुण। वायु का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, हल्कापन का। ऐसे हम हर परिस्थिति में हल्के रहे, भारी ना हो, तो वायु का गुण धारण कर लिया, तो कभी भी मृत्यु का कारण साइक्लोन नहीं बनेगा। ऐसे आकाश का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, विशाल हृदय, और विशाल हृदय वाला ही जो होगा वो ही क्षमा कर सकेगा। तो हम विशाल हृदय वाले बने, किसी की कमी कमजोरी को मन में न लाए। और अंत में अग्नि, सूर्य अग्नि का रूप है ना, और अग्नि में क्या होता है, कोई भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा भी ऐसा ज्वालामुखी रूप बना हुआ हो, वॉल्केनिक योगा जो बोलते हैं, कोई भी आए, रोता हुआ आए, उसका रूप बदल जाए, वो हंसता हुआ चला जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। तो भाव क्या है, ये तत्वों का तो बहुत बहुत बड़ा वो है, लेकिन ये तो जस्ट हिंट दिया कि एक एक आप सबको ये होमवर्क है कि आप निकालना ये हर तत्व के पांच पांच गुण, और बस वो गुण को हम धारण करेंगे तो जितनी भी नेचुरल कैलेमिटी होगी वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, इच्छा मृत्यु जो कि ना भीष्म पितामह को वरदान के रूप में प्राप्ति, हम सब वो ही है हम सब, लेकिन ये तभी होगा जब इन तत्वों पर विजय प्राप्त। तो ब्रह्मा बाबा तो इन सब के लिविंग एग्जाम्पल थे और ब्रह्मा बाबा यही जो सिखा के गए हैं हम सब अपने जीवन में अगर धारण करेंगे वो ही वास्तव में ब्रह्मा बाबा समान बनने के लिए एक उनके फुट स्टेप पर चलना है। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। सबने मनजीत, जगत जीत, प्रकृति जीत और विश्व जीत की विधि को सीख लिया। सबसे पहले हमें अपने मन के संकल्पों को इतना शक्तिशाली शुद्ध बनाना है ताकि हम कर्मातीत स्टेज की पृष्ठभूमि को तैयार कर सके। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया वो भ्राता जी ने अपने सन्मुख देखा, अपनी जीवन की अनुभूतियों में उन्हें उतारा और हम सबके समक्ष रखा कि हम भी अपने मन की क्वालिटी को ऐसा तैयार करें जो शांत के साथ साथ सामने वाली आत्माओं के भी संकल्पों को समझ जाए। इसी के साथ साथ हमारी कहीं बुद्धि इच्छा जाए नहीं, हम ऐसे अवर रेडी रहें जैसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपन्नता संपूर्णता को पाने के लिए सब कारोबार को समेट लिया। तो इस प्रकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा कर्मयोगी भी थे और कर्मातीत भी थे, तो हमें भी कर्मयोगी बनते हुए कर्मातीत बनना है। हम भ्राता जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि ऐसी अनमोल शिक्षाएं जो हमारे लिए बिल्कुल अद्वितीय हैं, अनमोल हैं, वो आपने हमें प्रदान की, वो आंखों देखा चित्रण हमारे सामने खींचा और हमें आपको देखकर भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आप भी उस अवस्था को प्राप्त हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सहयोगी साथी बनाने की आपने कला सिखाई, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और हम सब इनका प्रतिदिन प्रयोग करेंगे और अपनी स्थिति को ऐसी उन्नत बनाएंगे। हम इस बात के लिए भ्राता जी को आश्वस्त करते हैं और संकल्प करते हैं। ओम शांति।
का